एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद इतिहास का लगे, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है।
बिल्कुल, विषय है वे उपनिवेशीकरण यानी डीकॉलोनाइजेशन, और इसे समझने के लिए हम सहारा ले रहे हैं इतिहासकार डैन कैनेडी के काम का।
हाँ, खासकर उनकी किताबों डीकॉलोनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी लेगेसीज और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन और डीकॉलोनाइजेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के जो सारांश है हमसे।
तो आज की इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे दुनिया भर में फैले ये जो यूरोपीय साम्राज्य थे वो आखिर खत्म कैसे हुए, और ये जानना मतलब जरूरी क्यों है आज।
जरूरी इसलिए है क्योंकि उस दौर के जो फैसले थे, जो संघर्ष हुए, जो उथल पुथल मची, उसी ने तो आज की दुनिया का नक्शा बनाया है एक तरह से।
हाँ, चाहे वो देशों के बीच की सीमाएं हो,
बिल्कुल, या फिर आर्थिक गैर बराबरी हो, या कई इलाकों में आज भी जो तनाव चलता रहता है।
हाँ,
इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी व्यू उपनिवेशीकरण के दौर से जुड़ी हैं। इसे समझे बिना मुझे लगता है आज की दुनिया को पूरी तरह पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है।
तो चलिए इस अहम और काफी पेचीदा कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं डैन कैनेडी से, जिन्होंने इस विषय पर इतना गहरा काम किया है। आखिर कौन है ये और क्या खास है इनके नजरिए में?
डैन कैनेडी वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने प्रोफेसर हैं। उनकी खास दिलचस्पी रही है ब्रिटिश साम्राज्य, उपनिवेशवाद और दुनिया के इतिहास में। कैम्ब्रिज से पीएचडी हैं और दशकों से इस फील्ड के बड़े नामों में गिने जाते हैं।
और उनकी सबसे दिलचस्प बात शायद ये है, जैसा आपने कहा, कि वो इस कहानी को सिर्फ एक तरफ से नहीं देखते।
हाँ, मतलब ना तो वो सिर्फ कॉलोनीज या उपनिवेशों के संघर्ष पर फोकस करते हैं और ना ही सिर्फ ताकतवर साम्राज्यवादी देशों की चालों पर।
सही कहा, वो इन दोनों के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं उनको देखते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे पर असर डाल रहे थे, कैसे उनके हित टकरा रहे थे
और कभी कभी मिल भी रहे थे।
उनका काम बहुत गहरी रिसर्च पर आधारित है, जिसमें वो दोनों तरफ के दस्तावेजों को खंगालते हैं।
वो कोशिश करते हैं कि कई अलग अलग नजरियों को मिलाकर एक संतुलित तस्वीर सामने आए।
बिल्कुल, बजाय इसके कि किसी एक ही कहानी को सच मान लिया जाए। उनकी पिछली किताबें भी, जैसे आइलैंड्स ऑफ वाइट या द लास्ट ब्लैंक स्पेसेस, वो दिखाती हैं कि उनकी पकड़ इस विषय पर कितनी मजबूत है।
अच्छा, तो अब आते हैं उनके मुख्य विश्लेषण पर। वे उपनिवेशीकरण को लेकर कैनेडी का सबसे बड़ा तर्क क्या है? क्या ये बस इतना था कि यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेशों को आजादी दे दी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, और यही कैनेडी का अहम पॉइंट है। वो कहते हैं कि ये कोई सीधी साधी एक तरफा घटना नहीं थी, ये एक बहुत ही उलझी हुई, झगड़ों से भरी और अक्सर खून खराबे वाली वैश्विक प्रक्रिया थी, जिसने दुनिया को आप कह सकते हैं जड़ से बदल दिया। और ये सिर्फ कॉलोनीज में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों का नतीजा भर नहीं था।
नहीं, कैनेडी जोर देते हैं कि इसमें कई खिलाड़ी शामिल थे और सबके अपने अपने मतलब थे।
एक तरफ साम्राज्यवादी ताकतें थीं
जो अपना दबदबा बनाए रखना चाहती थी।
हाँ, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी आंदोलन थे जो आजादी मांग रहे थे। फिर संयुक्त राष्ट्र जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन उभर रहे थे। और हाँ, उस वक्त की दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ, वो भी इस खेल में बड़े खिलाड़ी थे जिनके अपने हित थे।
और कैनेडी ये भी कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया बड़ी विरोधाभासी थी। मतलब एक तरफ तो ये गुलामी से मुक्ति का पल था, आजादी का जश्न था,
लेकिन दूसरी तरफ
ये एक अनिश्चितता का दौर भी था। आजादी तो मिली, लेकिन इसने निर्भरता, संघर्ष और गैर बराबरी के नए रूप भी पैदा कर दिए। कैनेडी का एक अहम विचार यहीं सामने आता है।
हाँ,
वो कहते हैं वे उपनिवेशीकरण सिर्फ मुक्ति का क्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन था जिसने औपचारिक शासन समाप्त करते हुए भी निर्भरता के नए रूप बनाए।
अच्छा, मतलब कागजी आजादी मिल गई, लेकिन असलियत में पुरानी ताकतों का असर या आर्थिक निर्भरता बनी रही, बस उसका रूप बदल गया।
बिल्कुल, तो उनका विश्लेषण इस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि आखिर ये साम्राज्य खत्म कैसे हुए और उनके खत्म होने का दुनिया पर क्या और कैसा असर पड़ा जो आज तक महसूस होता है। ये उन आसान कहानियों को चुनौती देता है जो हम अक्सर सुन लेते हैं। और ये विश्लेषण सिर्फ इतिहासकारों या राजनीति के छात्रों के लिए ही नहीं है।
नहीं, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो समझना चाहता है कि हमारी आज की दुनिया उस दौर से कैसे निकली जब बड़े बड़े साम्राज्य ढह रहे थे।
सही कहा, यह हमें सतही जानकारी से आगे ले जाकर मामले की गहराई और उसकी आज की प्रासंगिकता को समझने में मदद करता है।
चलिए अब इस प्रक्रिया के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा और उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय से जब ये साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर नजर आते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थीं।
हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में देखें तो लगता था कि यूरोप के साम्राज्यों का सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। दुनिया के बड़े हिस्से पर उनका सीधा या टेढ़ा कब्जा था। लेकिन केनेडी बताते हैं कि इन ताकतों के अंदर ही बड़े विरोधाभास थे।
जैसे?
जैसे अपने देश, मान लीजिए ब्रिटेन या फ्रांस में, तो वो लोकतंत्र और बराबरी की बात करते थे, लेकिन अपनी कॉलोनीज में उनका रवैया बिल्कुल तानाशाही वाला था।
ये दोहरापन ज्यादा दिन टिक नहीं सकता था, है ना? और इसी दौरान कॉलोनीज में एक नया पढ़ा लिखा तबका उभर रहा था।
हाँ, जिन्होंने पश्चिम में ही शिक्षा पाई थी।
और मजे की बात यह है कि इसी तबके ने उन्हीं पश्चिमी विचारों जैसे राष्ट्रवाद, आजादी, अपना शासन खुद चलाने का हक, सेल्फ डिटर्मिनेशन को हथियार बना लिया।
बिल्कुल, नेहरू हों, घाना के क्रुमा हों या वियतनाम के होचीमिन, ये सब नेता इसी पीढ़ी के थे जिन्होंने शासकों के ही विचारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया।
लेकिन शायद सबसे बड़ा मोड़ आया दूसरे विश्व युद्ध से। केनेडी से वी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तेज करने वाला सबसे बड़ा कारण मानते हैं।
हाँ, युद्ध ने इन साम्राज्यों की कमर तोड़ दी, आर्थिक तौर पर भी और उनकी साख के लिहाज से भी।
आर्थिक तौर पर तो वो तबाह हो ही गए थे।
हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर एशिया में जापान ने जिस तरह शुरुआत में पश्चिमी ताकतों को हराया, जैसे सिंगापुर का पतन, उससे ये भ्रम टूट गया कि गोरे शासक हमेशा अजेय होते हैं।
ये दिख गया कि उन्हें भी हराया जा सकता है।
सही। साथ ही अटलांटिक चार्टर जैसे घोषणा पत्र सामने आए जिसमें सभी लोगों के अपने भविष्य का फैसला खुद करने के अधिकार की बात कही गई थी।
भले ही चर्चिल जैसे नेताओं का मतलब यूरोप के देशों से रहा हो,
हाँ, लेकिन कॉलोनीज के नेताओं ने इसे अपने हक में इस्तेमाल किया। युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो गए। साम्राज्य कमजोर पड़ रहे थे और आजादी की आवाजें बुलंद हो रही थी।
और ये जानना भी जरूरी है, जैसा आप कह रहे थे कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन सब एक जैसे नहीं थे।
जी,
केनेडी इस विविधता पर काफी जोर देते हैं।
हाँ, अलग अलग जगहों पर इनकी विचारधाराएं अलग थीं। कहीं नस्ल या जाति पर आधारित राष्ट्रवाद था, कहीं धर्म पर, कहीं भाषा पर, तो कहीं समाजवाद का असर ज्यादा था।
उनकी लड़ाई के तरीके भी अलग थे और उनका जनाधार भी।
बिल्कुल, कोई आंदोलन शहरों के मध्य वर्ग पर टिका था तो किसी में किसानों की भूमिका अहम थी।
हाँ, और आजादी पाने के रास्ते भी अलग अलग अपनाए गए। केनेडी मुख्य रूप से दो तरह के रास्तों की बात करते हैं।
कौन से?
एक था बातचीत और संवैधानिक रास्ता। इसमें जनता को लामबंद करना, हड़तालें, बॉयकॉट और फिर साम्राज्यवादी ताकत से मोलभाव करना शामिल था।
अच्छा।
इसका एक क्लासिक उदाहरण घाना है, जहां क्वामे निक्रुमा की पार्टी ने अहिंसक प्रदर्शनों, पॉजिटिव एक्शंस के जरिए ब्रिटेन पर दबाव बनाया और आजादी हासिल की। भारत का मामला भी काफी हद तक इसी श्रेणी में आता है, जहां गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में चले लंबे अहिंसक आंदोलन ने ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर किया। हालांकि यहां कहानी बंटवारे की भयानक हिंसा से बहुत पेचीदा हो जाती है।
हाँ, वो तो है। और दूसरा रास्ता?
दूसरा रास्ता था हथियारबंद संघर्ष का।
ओके।
ये रास्ता अक्सर उन कॉलोनीज में अपनाया गया जहां बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग आकर बस गए थे, जिन्हें सेटलर्स कहा जाता था, और जो अपनी जमीन और अपना रुतबा छोड़ने को तैयार नहीं थी।
या फिर जहां साम्राज्यवादी ताकत किसी भी कीमत पर अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहती थी, चाहे वो आर्थिक कारण हो या रणनीतिक।
इसके सबसे भयानक उदाहरण शायद अल्जीरिया और वियतनाम है।
अल्जीरिया, हाँ, वहां लाखों फ्रांसीसी बसे हुए थे और फ्रांस उसे अपना अटूट हिस्सा मानता था। वहां FLN यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट और फ्रांसीसी सेना के बीच सालों तक एक बेहद वैशी जंग चली।
इसी तरह वियतनाम में होचीमिन के नेतृत्व में पहले फ्रांसीसियों और फिर अमेरिकियों के खिलाफ लंबा और कामयाब गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया। केन्या में भी माऊ माऊ विद्रोह।
हाँ, वो जमीन पर कब्जे के खिलाफ एक हिंसक संघर्ष था जिसे अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचला।
यहीं पर केनेडी का एक और अहम विचार सामने आता है। वो कहते हैं,
कौन सा?
वी उपनिवेशीकरण की हिंसा अक्सर आकस्मिक नहीं बल्कि नए राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना और वैधता के लिए मौलिक थी।
मतलब ये खून खराबा कई बार सिर्फ एक दुखद घटना नहीं था, बल्कि इसी के जरिए नई सत्ताएं बन रही थीं और अपनी जगह पक्की कर रही थी। इसने आजादी के बाद के देशों के चरित्र को भी गढ़ा।
अच्छा, तो ये तो हुई कॉलोनीज की तरफ की बात, लेकिन जिन देशों का राज था यानी साम्राज्यवादी ताकतें, वो कैसे रिएक्ट कर रही थी इन बढ़ती मांगों और संघर्षों पर? क्या उन्होंने आसानी से हथियार डाल दिए?
उनके आर्थिक फायदे क्या थे, उनकी राजनीतिक चालें क्या थीं, दुनिया में इनकी साख का सवाल कितना बड़ा था, और हाँ, उनकी अपनी नस्ली और सांस्कृतिक सोच का भी इसमें बड़ा हाथ था।
अक्सर उनका मकसद अपना असर पूरी तरह खत्म करना नहीं बल्कि उसे बदलना था।
बिल्कुल, यहीं पर मैनेज्ड डीकोलोनाइजेशन यानी एक तरह से नियंत्रित तरीके से आजादी देना और नियो कॉलोनियलिज्म यानी नए तरह का उपनिवेशवाद जैसे विचार सामने आते हैं। कोशिश ये थी कि राजनीतिक कंट्रोल छोड़ने के बाद भी आर्थिक या रणनीतिक पकड़ किसी न किसी तरह बनी रहे।
केनेडी का एक और नुक्ता यहाँ फिट बैठता है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने पूर्व उपनिवेशों में अपने प्रभाव को समाप्त करने की नहीं बल्कि उसे नए रूपों में बदलने की कोशिश की।
सही, ये दिखाता है कि उनकी सोच क्या थी, कंट्रोल का तरीका बदलो, कंट्रोल मत छोड़ो।
और हर साम्राज्यवादी देश का तरीका भी अलग था। ब्रिटेन ने भारत और पश्चिम अफ्रीका में बातचीत से सत्ता सौंपी।
हाँ, भले ही उसके नतीजे जैसे बंटवारा भयानक रहे।
वहीं फ्रांस ने इंडो चाइना और खासकर अल्जीरिया में, जहां फ्रांसीसी बाशिंदों का मसला था, ज्यादा कड़ा रुख अपनाया और लंबी लड़ाइयां लड़ी।
पुर्तगाल तो अफ्रीका में अपने उपनिवेश अंगोला मोजाम्बिक छोड़ने को तैयार ही नहीं था और वहां सालों तक खूनी संघर्ष चला।
फ्रांस के नेता चार्ल्स डी गॉल जैसे लोगों ने तो कोशिश की कि फ्रांस का असर बना रहे बस एक नए ढांचे के तहत।
हाँ, तो ये ताकतें सिर्फ दर्शक नहीं थीं, वो सक्रिय रूप से इस पूरी प्रक्रिया को अपने हिसाब से मोड़ने में लगी थीं।
और ये सारा खेल सिर्फ कॉलोनी और उसके शासक देश के बीच ही नहीं चल रहा था। जैसा आपने शुरू में कहा था, इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू बहुत अहम थे।
बिल्कुल, केनेडी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि वी उपनिवेशीकरण एक ग्लोबल घटना थी और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया उस वक्त चल रहे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर ने।
दुनिया दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ।
हाँ, और इन दोनों महाशक्तियों की आपसी खींचतान ने वे उपनिवेशीकरण की रफ्तार को भी बढ़ाया और उसके नतीजों को भी बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया।
कहने को तो दोनों ही उपनिवेशवाद के खिलाफ थे।
हाँ, अमेरिका खुद ब्रिटेन से आजाद हुआ था और सोवियत संघ साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का हिस्सा मानकर उसका विरोधी था, लेकिन दोनों के अपने एजेंडे थे।
अमेरिका की हालत अक्सर दुविधा वाली रहती थी। एक तरफ वो आजादी का समर्थन करता था लेकिन दूसरी तरफ उसका मुख्य मकसद था कम्युनिज्म को रोकना।
सही, इस चक्कर में वो कई बार अपने यूरोपीय साथी देशों जैसे फ्रांस का साथ देता रहा या फिर नए आजाद हुए देशों में ऐसे तानाशाहों को सपोर्ट करने लगा जो कम्युनिस्ट विरोधी थे।
वहीं सोवियत संघ ने कई राष्ट्रवादी और मुक्ति आंदोलनों का खुलकर साथ दिया, विचारों से भी और हथियार और पैसे से भी।
इससे इन आंदोलनों को बहुत ताकत मिली।
नतीजा ये हुआ कि कई नए आजाद देश कोल्ड वॉर के मैदान बन गए।
हाँ, कांगो, वियतनाम, अंगोला, यहाँ अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं लड़े बल्कि अपने अपने समर्थक गुटों को लड़वाते रहे। इन्हें प्रॉक्सी वॉर कहा गया।
कांगो के पहले प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा की दुखद कहानी।
हाँ, जिन्हें सत्ता से हटाकर मार दिया गया, वो इसी कोल्ड वॉर की राजनीति का नतीजा थी।
इसी माहौल में गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट का जन्म हुआ,
बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955।
हाँ, भारत के नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के नासिर जैसे नेताओं ने मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश की, ना अमेरिकी खेमे में ना सोवियत खेमे में।
संयुक्त राष्ट्र भी एक मंच बना जहाँ नए आजाद देश अपनी बात रख सकते थे।
1956 का स्वेज संकट भी एक बड़ा मोड़ था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमला किया,
तो अमेरिका के दबाव में उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे साफ हो गया कि पुराने यूरोपीय साम्राज्य अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे।
तो ये साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खासकर कोल्ड वॉर, इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा थी।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी असल चुनौतियां तो शायद शुरू हुई, खासकर आर्थिक मोर्चे पर।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है जिसे केनेडी उठाते हैं। राजनीतिक आजादी का मतलब हमेशा आर्थिक आजादी नहीं होता। जो ढांचा गुलामी के दौर में बना था कि कॉलोनी सिर्फ कच्चा माल पैदा करे और तैयार माल बाहर से मंगवाए, वो आजादी के बाद भी काफी हद तक बना रहा। इसी को निर्भरता का सिद्धांत या नव उपनिवेशवाद कहा गया।
नए देशों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उसमें विविधता लाने, उद्योग लगाने की भारी चुनौती थी। उनके पास ना पैसा था, ना तकनीक,
और ना ही दुनिया के बाजार में बराबरी से मुकाबला करने की ताकत। ऊपर से पुरानी औपनिवेशिक ताकतों और वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं का दबाव अलग।
और इस पूरी प्रक्रिया की विरासत सिर्फ आर्थिक नहीं थी, हिंसा और सदमे के गहरे निशान बाकी रह गए।
भारत का बंटवारा हो, अल्जीरिया या वियतनाम की लड़ाइयां हो, लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा था।
फ्रांस फैनन जैसे विचारकों ने इसे मन का उपनिवेशीकरण यानी गुलामी की मानसिकता से आजाद होना,
अतीत की कड़वी यादों से कैसे निपटा जाए, कैसे सुलह हो, ये आज भी कई देशों में बड़ा सवाल है।
और फिर यूरोपियन ताकतों ने अफ्रीका और एशिया में जो मनमानी सीमाएं खींच दी थीं, उनकी वजह से भी बहुत अस्थिरता पैदा हुई। कई देशों में नस्ली या क्षेत्रीय झगड़े शुरू हो गए, जैसे नाइजीरिया या कॉन्गो में।
और कई पुरानी कानून, पुलिस और प्रशासन के तरीके आज़ादी के बाद भी चलते रहे।
हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया ने सिर्फ कॉलोनीज को नहीं बदला, बल्कि जिन देशों ने राज किया था उन पर भी असर डाला।
कैसे?
कॉलोनी से लोग निकलकर यूरोप जाने लगे, जिससे वहां समाज बदला, संस्कृति बदली और राष्ट्रीय पहचान को लेकर नई बहसें शुरू हुई।
अच्छा, तो अगर हम डेन कैनेडी के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो कुछ खास बातें या संदेश उभर कर आते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम क्या लगता है आपको?
मेरे ख्याल से सबसे पहली बात है जटिलता और विविधता। यह पूरी प्रक्रिया कहीं भी एक जैसी या सीधी साधी नहीं थी। हर जगह के हालात, आंदोलन के तरीके, शासक की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग थे।
हाँ, जैसे घाना की शांतिपूर्ण आजादी और अल्जीरिया के खूनी जंग में जमीन आसमान का फर्क था। कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात है औपनिवेशिक विरासतों का जिंदा रहना, यानी औपचारिक आजादी के बाद भी पुराने रिश्ते नए रूपों में जारी रहे,
चाहे वो नव उपनिवेशवाद के जरिए आर्थिक कंट्रोल हो।
हाँ, या फिर राजनीतिक सोच, संस्थाओं और संस्कृति पर असर। अफ्रीका में आज भी फ्रांस का दबदबा या दुनिया का व्यापार का ढांचा इसे दिखाता है। हम भारत में भी देख सकते हैं कि अंग्रेजों के बनाए कई कानून या सिस्टम आज भी चल रहे हैं, भले ही बदले हुए रूप में।
तीसरा, इसका अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक पहलू। जैसा हमने देखा, ये सिर्फ दो पक्षों का मामला नहीं था। कोल्ड वॉर, संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे फैक्टर्स ने पूरी कहानी और उसके नतीजों पर गहरा असर डाला।
वियतनाम या कॉन्गो जैसे देशों की किस्मत तो काफी हद तक बाहरी ताकतों ने तय की। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को भी इसी ग्लोबल संदर्भ में समझना चाहिए।
चौथा, हिंसा और संघर्ष की अहम भूमिका। कैनेडी इस बात पर जोर देते हैं कि हिंसा कई मामलों में सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा थी।
इसी से नई सत्ताएं बनी, लेकिन इसने गहरे जख्म भी दिए। अल्जीरिया युद्ध या भारत का बंटवारा इसके उदाहरण हैं।
हम दक्षिण एशिया में तो इस तरह के संघर्षों की विरासत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं।
और पांचवा अहम संदेश है, ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। वी उपनिवेशीकरण कोई इतिहास का बंद पन्ना नहीं है।
नहीं,
इसकी विरासत आज भी जिंदा है और इससे जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। आज दुनिया में जो गैर बराबरी है या पुराने जख्मों के लिए मुआवजे और माफी की मांगे उठती हैं,
या अपनी सांस्कृतिक पहचान को दोबारा खोजने की कोशिशें होती हैं, ये सब उसी अधूरे एजेंडे का हिस्सा हैं।
कैनेडी के विश्लेषण में एक और विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है।
कौन सा?
व्युपनिवेशीकरण द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने संप्रभुता और समानता के सार्वभौमिक सिद्धांतों की घोषणा करते हुए भी औपनिवेशिक दुनिया की कई असमानताओं और पदानुक्रमों को अपने भीतर समाहित कर लिया।
मतलब ये कि आज की दुनिया में कहने को तो सब देश बराबर हैं, संप्रभु हैं, लेकिन असलियत में पुरानी ताकतवर कमजोर वाली हैसियतें काफी हद तक बनी हुई हैं।
बिल्कुल, ये आज की दुनिया के विरोधाभासों को समझने में मदद करता है।
तो ये सब अकादमिक बातें नहीं हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आज की दुनिया से सीधा ताल्लुक है। कैसे?
सबसे पहले तो आज की दुनिया में जो झगड़े और तनाव हैं उन्हें समझने में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या हमारा अपना दक्षिण एशिया। कई मौजूदा संघर्षों की जड़ें औपनिवेशिक काल की नीतियों और उस वक्त खींची गई बेतुकी सरहदों में हैं।
हाँ।
कैनेडी का विश्लेषण हमें इन झगड़ों का ऐतिहासिक संदर्भ देता है। जैसे अफ्रीका के कई देशों में आज भी फ्रांस इतना दखल क्यों देता है, ये समझने के लिए पुराना इतिहास जानना जरूरी है।
ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की खाई है।
हाँ, या ये कि क्यों कुछ देश सिर्फ कच्चा माल ही बेचते रह जाते हैं, या फिर संसाधन अभिशाप के अमीर प्राकृतिक साधन होते हुए भी देश गरीब रह जाते हैं। इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे और नव उपनिवेशवाद में हैं।
ये हमें विकास की चुनौतियों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है।
और तीसरा, ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच सिखाता है। इतिहास की जो बनी बनाई कहानियां हमें सुनाई जाती हैं उन पर सवाल उठाना सिखाता है।
ये हमें समझने में मदद करता है कि क्यों ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों में दक्षिण एशियाई या अफ्रीकी मूल के इतने लोग रहते हैं।
सही, ये पहचान राष्ट्रवाद और मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद पर चल रही बहसों को भी एक गहराई देता है। भारत की अपनी आजादी के बाद की यात्रा और चुनौतियों को समझने के लिए भी ये विश्लेषण बहुत काम का है।
तो कुल मिलाकर डैन केनेडी के काम से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे अहम सबक यही है कि उपनिवेशीकरण कोई बीती हुई कहानी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया है और बना रही है। और ये बहुत पेचीदा है ना, पूरी तरह कामयाबी ना पूरी तरह नाकामी। ये हमें सिखाता है कि दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना बंद करें।
मैं सहमत हूँ, और मेरे लिए अहम बात यह है कि औपनिवेशिक विरासतें, चाहे वो आर्थिक हों, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक, आज भी बहुत मजबूती से मौजूद हैं। इस इतिहास को समझे बिना हम आज की दुनिया की समस्याओं, चाहे वो गैर बराबरी हो, झगड़े हों या पहचान के सवाल हों, का हल नहीं निकाल सकते। केनेडी हमें आसान जवाबों से आगे जाकर एक ज्यादा बारीक और गहरी समझ देते हैं।
उनके काम की असली कीमत शायद यही है कि वो हमें इस उलझे हुए अतीत और हमारे आज पर उसके गहरे असर को समझने के औजार देते हैं। ये हमें अपनी दुनिया को और उसमें अपनी जगह को ज्यादा गहराई से देखने में मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।